नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत ने पर्यावरण से जुड़े प्रयासों को जन केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने पर बल दिया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में ये बात कही। श्री यादव ने कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप विकासशील देशों की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है। श्री यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों की चुनौतियों का उल्लेख किया।
जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल कहा कि भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय लोगों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की आवश्यकता है। निर्वाचन आयोग ने कल देश की चुनाव व्यवस्था पर एक तथ्य पत्र जारी किया है। आयोग ने बताया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं तथा विधान परिषदों के चुनाव स्वतंत्र संवैधानिक संस्था निर्वाचन आयोग की देखरेख में होते हैं और मतदान फोटो पहचान पत्र के आधार पर कराया जाता है। आयोग ने कहा कि करीब 1 अरब मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं। ये तथ्य पत्र अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत की निर्वाचन प्रक्रिया पर टिप्पणी के बाद जारी किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 2 अक्टूबर से 1 महीने का अभियान युवाओं के लिए बैंकिंग शुरू करेंगे। नई दिल्ली में कल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मेलन के समापन भाषण में उन्होंने कहा कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना और उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन करना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने परीक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। एजेंसी ने करीब 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल करने का फैसला किया है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार प्रश्न पत्रों की जाँच के लिए 4 स्तर की व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके अलावा एजेंसी ने नए कार्यालय में CISF की तैनाती के साथ सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाएगी। ये फैसला केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश पर लिया गया। गृह मंत्री अमित शाह दक्षिण भारतीय मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज से 2 दिन के चेन्नई दौरे पर हैं। श्री शाह कल मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में तमिलनाडु, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। मई में यह अनुमान 6.7% था। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत जापान साझेदारी और मजबूत करने पर बल दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों से भारत में निवेश और कारोबारी साझेदारी बढ़ाने का आह्वान किया। नई दिल्ली में कल जापानी प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के संबंध शांति, प्रगति और समृद्धि की साझा सोच पर आधारित हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को बमबारी की धमकी दी है। 2 क्षेत्रीय अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ओमान के ईरान के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही को लेकर समझौते के करीब पहुंचने से नाराज हैं। इस बीच ब्रिटेन की समुद्री निगरानी एजेंसी के अनुसार होर्मुज जलडमरू मध्य से बाहर निकल रहे एक जहाज पर मिसाइल से हमला किया गया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम आज नीदरलैंड्स के एम्स्टलफिन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी मुकाबले में पाकिस्तान का सामना करेगी। अगले दौर में जगह बनाने के लिए दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।